أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي أمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون درود بيج محمد وآل محمد أيضا محترم إن سے روزہ مجالس کی دوسری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع ہے مقصد تخلیق انسان کہ جسے ہم سورہ زاریات کی جو 51واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 56 کے ذیل میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں. ارشاد رب العزت ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی انسان در حقیقت ایک خاص نظام زندگی، ایک خاص مقصد، ایک خاص پلاننگ کے تحت اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور اگر کل کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو، کتاب کے ساتھ اس کے مفسر اور ٹیچر کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ قرآن کی حقیقی تفسیر کو بیان کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کو تا قیامت رہنا ہے، جب کتاب ہے تو وارث کتاب بھی ہونی چاہیے، اور یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر دلیل ہے. اگر ایسے ہی جاندار صلوات بھیجیں گے تو میں تو بہت جلد اتر آؤں گا. اجان محترم، یہ تھوڑا تھوڑا ساتھ مل جاتا ہے نا، آپ کا تھوڑا سا سانس مل جاتا ہے، دو قطرے مل جاتے ہیں، ہمیں ٹونک مل جاتا ہے. اور ایک حقیقی بات میں بتاؤں، مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے یا نہیں ہے. ہے کوئی ٹیچر؟ نہیں ہے. دیکھیں استاد جو ہوتا ہے نا، جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو استاد، میں خود ایک ٹیچر ہوں تو لیکچر کی تیاری کر کے آتا ہوں، اس کے نوٹس بناتا ہوں مثلا، اس کو ڈیلیور کرتا ہوں، تو جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں اور طالب علم جو ہے وہ دل نہ دے استاد کو، جسم تو دے دل نہ دے، پھر استاد کا پڑھانے کا دل نہیں چاہتا. پھر استاد کہتا ہے ٹھیک ہے جناب، جب یہ تم دل نہیں دے رہے تو میں علم بھی نہیں دے رہا. چنانچہ چہرے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے معافِ ضمیر کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، محمد آل محمد کے نام پہ صلوات بھیج رہے ہوتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ کی نورانیت، آپ کی مسکراہٹ جو ہے میرے لیے بہت زیادہ تسلی اور تشفی کا سبب بنتی ہے، بلکہ مجھے قوت و طاقت ادا کرتی ہے. ماشاء اللہ. اب یہ انہوں نے ڈیڑھ گھنٹے تک کے لیے چارج کر دیا ہے. درود بھیج محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایدان محترم سورہ زاریات آیت نمبر 56، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اس جملے پر ہم نے کل تفصیل سے روشنی ڈالی ہے کہ اس جملے میں کیا حسن اور کیا خوبی پوشیدہ ہے کہ ہم نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہماری عبادت کرو۔ اتفاق کی بات یہ کہ کل جو برادر یہاں بیٹھے جن کی مدد کا میں نے کہا تھا، آج وہ پیچھے چلے گئے، دوسرے صاحب آ گئے کہ شاید مولانا میری تعریف کر دیں۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ضمنی طور پہ ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں آج جو میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنس سے، اعتماد سے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ کے ذہن میں ہوگا مولانا پتہ نہیں کیسے یاد کرتے ہوں گے، اب جو جن کو عادت نہیں ہے نا ان کو کہا مولانا آپ اتنے سارے مطالب کیسے یاد کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال ہم نے پہلے اشرے میں 4 جگہ خطاب کیا، تو کہیں گے 4 موضوعات پہ آپ کیسے خطاب کر لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ انسان کو کانفیڈنس ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، جبھی تو گفتگو کرتا ہے۔ تو آج میں یہاں پہ ہوں تو یہاں تک پہنچانے میں میرے والدین کا، میرے بزرگوں کا اور میرے اساتید کا بہت بڑا کردار ہے۔ اگر مجھے بچپن میں میری تشویق نہ کی جاتی، ہمت افزائی نہ کی جاتی، تو میں خطیب نہیں بنتا۔ جو سوز خان آج سوز خانی کر رہا ہے، اس کی ہمت افزائی کرنے والے لوگ تھے۔ اسے سبحان اللہ، واہ واہ، جزاک اللہ، کیا کہنے، ماشاء اللہ، جیتے رہو کہنے والے افراد موجود تھے۔ لہذا بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کرے، اور میں بہرحال ایک ماہر نفسیات ہوں تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس لیے کہ یہی بچہ کل عالم بنے گا، خطیب بنے گا، ذاکر بنے گا، شاعر بنے گا، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ جیسے وہ میں آگے بیٹھ گیا تو ہمارے بھائی کہ بچے کو اشارہ کرتے بس کرو، میں کہ نہیں پڑھنے دو بچے کو۔ آج یہ بچہ شرما رہا تھا، کل اس نے مجھ سے آگے کہا کہ مولانا مجھے سلام پڑھنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کل مجھ سے پہلے پڑھنا۔ تو آج کہہ لیں گے نہیں مولانا میں نے تو، کیا نام ہے بیٹا؟ مزیب۔ اور اس کا کانفیڈنس آپ دیکھیں نا، اس کا کانفیڈنس میں نے دیکھا۔ میں نے کہا اگر یہ بچہ، مجھے نہیں معلوم اس کا نام کیا ہے، کون ہے، اس کا کانفیڈنس ہے کہ میں نے کہا، صاحب خانہ موجود تھے اندر کمرے میں، میں نے کہا یہ بچہ اگر نحو پڑھے نا بہت آگے نکلے گا۔ کہیں گے مولانا یہ نحو پڑھتا ہے؟ میں نے کہا دیکھا، میں کہہ رہا تھا آپ سے اس کا کانفیڈنس یہ بتا رہا ہے، اور اس کے بیٹھنے کا انداز، اس کی گفتگو، اس کی ادائیگی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کل یہی بچے ہماری جگہ سنبھالیں گے، ہم 5 سال 10 سال ہوں گے آگے، اس کے بعد انا للہ ہو جانا ہے، مرحوم کا ٹیگ لگ جانا ہے، یہی بچے جو ہیں وہ آگے آئیں گے۔ ایسے جانے کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اور اس بچوں کو اپنے نام کا معنی بھی یاد تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے نام کا معنی بھی یاد ہوتا ہے۔ اچھا میں نے 20-20 سال کے بچوں سے پوچھا، بیٹا تمہارے نام کا معنی کیا ہے؟ مولانا پتہ ہی نہیں۔ یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے، یہ بچے کی تربیت ہے گھر کی۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے بیٹا مزیب عباس، کون، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اپنے بچوں کی ایسے تربیت کی جائے کہ بچوں میں اعتماد آئے، عزاداری کی خدمت کا جذبہ بڑھے، دین کی خدمت کا جذبہ بڑھے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کو بھیجا، اور قرآن کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا۔ مختلف عبادات ہیں، ہر عبادت اپنے مقام پر اچھی لگتی ہے۔ اس کی مثال میں نے دی کہ جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا اپنا ایک خاص مقام ہے۔ آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان چکھنے یا بولنے کے لیے، ہاتھ پیر کام کاج کے لیے، ہاتھ پیر کی جگہ، پیر ہاتھ کی جگہ، کان آنکھ کی جگہ، اور کان زبان کی جگہ، اور زبان جو ہے وہ عقل کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اسی طرح نماز نماز ہے، روزہ روزہ ہے، عزاداری عزاداری ہے، تولا تولا ہے، تبرہ تبرہ ہے، خمس خمس ہے، جہاد جہاد ہے، زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، تقلید تقلید ہے۔ ہر چیز کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اور اگر اس خاص مقام کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے اگر ہم اس عبادت کو انجام دیں تو ہمارے سارے کام جو ہے وہ عبادت بن جائیں گے۔ کل ایک سوال ہم نے شروع کیا تھا لیکن اس کا جواب رہ گیا تھا، آج ہمارے ایک دوست نے یاد دلایا کہ مولانا کل آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا، اس کا جواب رہ گیا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج اس کا جواب دیں گے، تذکر بھی ہو گیا، یاد دہانی بھی ہو گئی۔ لیکن کل میں نے آپ سے ایک چیز کہی تھی और वो भी मेरे बरदर ने मुझे याद दिलाई। मैंने कहा था कि हदीस किस्सा का तर्जुमा पढ़िएगा, यकीनन इंशाल्लाह कि आपने तर्जुमा पढ़ा होगा हदीस किस्सा का जाके। अगर आज कामयाब नहीं हुए तो इंशाल्लाह रात में जाके सोने से पहले हदीस किस्सा का तर्जुमा 2-4 मिनट लगेंगे, आप पढ़ के सोइएगा और उसका सवाब जो है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालिदा मुहतरमा को इमाम ज़माना की वालिदा मोहतरमा को हदिया किएगा कि मैं उनकी खुशनूदी के लिए हदीस किस्सा का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। वो सवाल ये था कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने दूसरे कामों को इबादत कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मेरे जहन में है और कल मैंने गुफ्तगू की थी, मैंने तालिबे इल्म की मिसाल दी थी। देखिए, नमाज का एक वक्त है, रोज़ा साल में माह रमज़ान में वाजिब है, और भी तरीक़े से वाजिब होता है, लेकिन माह रमज़ान में अल्लाह की तरफ से एक दफ़ा वाजिब है। ज़कात ख़ास चीज़ों पे वाजिब है, खौम्स उसके निकालने का ख़ास अंदाज है, तवल्ला एक ख़ास मेथड को कहा जाता है, तबर्रा एक ख़ास मेकेनिज़म का नाम है। हर इबादत का अपना एक मुकाम है। खूब आपने नमाज़ पढ़ ली, आपने साल भर में रोज़े रख लिए, आपके खुम्स की डेटा है, आपने खुम्स दे दिया, खूब बकिया जो आप कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। इसके लिए मैंने मिसाल दी थी कि इंसान जो है अपने मकसद दखली को पहचाने। मैंने कहा अगर एक तालिबे इल्म एक मकसद बनाता है, उस मकसद के हुसूल के लिए जद्दोजहद करता है, अब उस आला तरीन मकसद को हासिल करने के लिए क्या है, मुख्तलिफ किस्म के कामों का नजर है, कोचिंग जा रहा है, ट्यूशन ले रहा है, नोट्स बना रहा है, फोटोस्टेट करा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, कंबाइन स्टडी कर रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है उस आला हदफ के लिए। यानी ये सारे काम मुकदमा हैं उस आला तरीन मकसद तक रसाई के लिए। अब अगर हमारे जहन में अल्लाह की इबादत का सही तसव्वुर आ जाए तो हमारे सारे काम इबादत में शुमार हो सकते हैं। हमारा सोना भी इबादत में शुमार हो सकता है, हमारा खाना भी इबादत में शुमार हो सकता है, हमारा सांस लेना भी इबादत में शुमार हो सकता है, हमारा वालिदैन को देखना भी इबादत में शुमार हो सकता है, हमारा वालिदैन को प्यार मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत में शुमार हो सकता है, काबतुल्लाह पर नज़र डालना भी इबादत में शुमार हो सकता है, अली अगर मौजूद हों सामने अली के चेहरे को देखना इबादत हो जाता है, और अगर अली मौजूद ना हो तो अली का जिक्र करना इबादत हो जाता है। मौला अली का जिक्र आप करें, मसलन या अली मदद कहें, तस्बीह पढ़ें आप दिन में, या अली मदद, या अली मदद, या अली, या मौला अली, अस्सलाम अलैके या मौला अली, लेकिन दिल से, सिर्फ जबान से नहीं, दिल से पढ़ें। यानी जिसको कह रहा हूँ ना कि दिल दें इमाम अली को। हम लोग क्या करते हैं, मुसीबत हमारी यह है कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जिस्म देते हैं, दिल नहीं देते। नमाज में जिस्म तो होता है, दिल नहीं होता। अज़ादारी में जिस्म तो देते हैं, दिल नहीं देते मौला को। देते हैं 10 मुहर्रम तक के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई 2 महीने 8 दिन के लिए देता है, 8 रबीउल अव्वल तक नहीं। मौला को अगर दिल देना है तो फिर जिसको दिलदार बनाया है ना, फिर उसको हमेशा के लिए दिलदार बनाना चाहिए। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे सारे काम इबादत हो सकते हैं, कैसे, अगर वो आला तरीन मकसद यानी अल्लाह की इबादत जो है वो हमारे मद्देनज़र हो। क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है ना, ऐ अल्लाह इसलिए खा रहा हूँ कि बदन में कुव्वत आए, तेरी इबादत कर सकूँ, एक तालीम हासिल कर सकूँ, दो अपने वालदैन की खिदमत कर सकूँ, तीन अपने घर वालों का हाथ बटा सकूँ, चार किसी के सामने हाथ न फैलाऊँ, पाँच अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करूँ, छः अपने मुल्क अपने पैरों पर खड़ा करूँ, सात अब आप इस नियत से खाना शुरू करें, अब आपका खाना इबादत में शुमार हो जाएगा। अगर उस आला तरीन मकसद को देखा जाए और ये हमें कौन बताएगा? कुरान तो बता ही रहा है कि वह खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, लेकिन इसकी हकीकी तफसीर कहाँ नजर आएगी? इसकी हकीकी तफसीर अहले बैत बताएंगे अज़ीज़ाने गिरामी। अली कौन है? शब जिंदादार हैं। एक दफ़ा एक साहबी दौड़ा दौड़ा दर फातिमतु ज़हरा पे आया, बीबी गज़ब हो गया। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहा कि मौला अली तड़प तड़प के गिर गए, दुनिया से गुजर गए। बीबी ने कहा नहीं, अली की रोज़ाना की आदत यही है कि अली रोज़ाना अल्लाह की बारगाह में नवाज़ शब में इतना तड़पते हैं कि गोया ऐसा लगता है कि अली दुनिया से परवाह, उसकी रूह परवाज कर गई है। यही अली जो सब शब जिंदादार है, यही अली जो रात को खड़े होकर नमाज पढ़ने वाला है, यही अली जो तिलावत कुरान करने वाला है। अब एक दफा कायनात का रसूल कहते हैं अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। या रसूलल्लाह मेरे बिस्तर पे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? हाँ अली मेरी जान बच जाएगी। अगर कोई मुझ जैसा मौलवी होता कहते या रसूलल्लाह मेरी इबादत का क्या होगा? अली अल्लाह की रजा हासिल करना चाहता है। अब अगर बिस्तर पर सो हो जाएगा तो ये भी इबादत बन जाएगी, ये भी इबादत बन जाएगी। और अली कहते हैं ऐसी नींद आई के वाह वाह क्या कहने वाली। तो आदत की इबादत जो होती है ना, आदत की आदत हो जाती है। मसलन नौजवानों को आदत हो जाती है मोबाइलों की। मोबाइल आपके पास होता है लेकिन हमारे नौजवान जो है माजरत के साथ वो मोबाइल में कैद होते हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाहुम्मा फुका कुल असीर की बजाय अल्लाहुम्मा फुका कुल असीर मोबाइल। अल्लाह मोबाइलों के असीरों को रिहाई अता फरमा। दुरूद भेजो। अब इलाही आमीन कोई नहीं कहेगा, इलाही आमीन कोई नहीं कहेगा, मुझे पता है, इसलिए कि मोबाइल छोड़ना पड़ जाएगा। दुरूद भेजो मोहम्मद वाल मोहम्मद का। कैसे आदत, कैसे आदत हो जाती है? हर थोड़ी बार निकल के देखेंगे। अच्छा तय नहीं है किसी का SMS आएगा कॉल आएगी, लेकिन ये जो आदत हो गई निकाल के देखना चेक करना, ये क्या है? आप मोबाइल में कैद हो गए, ये आदत हो गई है आपको। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है, अगर ये टेक्नोलॉजी आप सवार हो जाए तो फिर ये बहुत नुकसान की बात है। आदत की इबादत नहीं होनी चाहिए। आदत हो जाती है नमाज़ पढ़ने की, आदत हो जाती है मजलिस में आने की, नहीं आदत नहीं होनी चाहिए। जिधर की तवज्जो रखिएगा, नमाज़ पढ़ें तवज्जो दिल से पढ़ें, आज़ादारी में आए, दिल से आए कि मौला को राज़ी करना है, कोई ऐसा अमल ना हो। वो मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अब इंसान को इबादत की खल किया गया, इबादत के लिए कहा गया है कि इंसान कमाल तक पहुँचे। ये कमाल क्या है? ये जो इंसान को ख्वाहिश होती है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर बनूँ, हर इंसान में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश मौजूद है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊं, मैं हमेशा ज़िंदा रहूं, फला फला उधर मेरे पास आ जाए। ये इस किस्म के छोटे मोटे ख्यालात जो हैं खुसूसन नौजवानों के जहनों में बहुत आते हैं। ये कुछ फितरी चीज़ें हैं कि जो हमारी दुनिया में आने के बाद कैद हो जाती हैं, कैप्चर हो जाती हैं, अगवा हो जाती हैं। यह हमेशा रहने की ख्वाहिश इस दुनिया के लिए नहीं है, यह हमेशा रहने की ख्वाहिश आखरत के लिए है। मैं ताकत और कुदरत का मालिक बन जाऊं, ये ताकत और कुदरत का मालिक बनना कमाल है, एक्सट्रीम पर जाना है। कमाल को अगर मैं मसलन कोई जहन में मेरे मुतरादिफ लफ्ज़ नहीं आ रहा है फ़िलहाल, एक्सट्रीम पर जाना है, बहुत ऊपर जाना है। कमाल यानी इससे बढ़कर कोई कमाल नहीं है। जिसको अल्लाह ने कहा अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम लिस्लाम, आज दीन कामिल हो गया, आज नेमत तमाम हो गई, दीन इस्लाम से राज़ी हो गया। ए अल्लाह आज ऐसा कौन सा वाकया हो कि दीन कामिल हो गया, अपने कमाल को पहुँच गया, अब इससे ऊपर कोई और दर्जा नहीं है जो दीन हासिल कर सके। तो आवाज़ आएगी कि आज अली की विलायत का ऐलान हो रहा है। आज अली की विलायत का ऐलान हुआ तो दीन उस मर्तबे पे पहुंच गया कि विलायत से अली आ जाएं, अली का साथ आ जाएं, अली की ज़ेर सरपरस्ती आ जाओ तो दीन कामिल, नेमत तमाम, अल्लाह तुम्हारे दीन से राज़ी होगा। दुरूद भेजो अज़मत मौलाए कायनात पर। अब ये कमाल जो है इसको हासिल करना है, मुझ में ताकत आ जाए। ये ताकत इस दुनिया के लिए नहीं है, लेकिन इसको आलम आखरत में इसकी हकीकी शक्ल नजर आएगी। इसको कहते हैं कमाल। हमें कमाल को हासिल करने के लिए खल किया है। मुश्किल यह है कि हम इस कमाल को दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं। तवज्जो रखिएगा,
और इतनी बड़ी ख्वाहिश इस दुनिया में फिट नहीं होती, जब फिट नहीं होती, पूरी नहीं उतरती, तो हम स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, इस्तराब आ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, और फिर जो ज़िंदगी का निज़ाम है, निज़ाम जिस्म जो है, ज़िंदगी का निज़ाम तहवाला हो जाता है। इसलिए कि आप एक बहुत बड़ी ख्वाहिश को एक बहुत छोटी दुनिया में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही जैसे आप एक 3 साल के बच्चे के लिबास किसी 20 साल के बच्चों को पहनाना चाहें, क्या होगा? शायद चीजें चीजरे हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, नहीं पहन सकता। इतनी बड़ी ख्वाहिश, कमाल जो अल्लाह ताला, अच्छा कल मैंने अर्ज़ किया कि ये कमाल कौन मुराद, 3 राहें हैं हमारे पास भाई मौलाना, ये कमाल कहाँ से आएगा? 3 राहें आपके पास, 3 राहों से आप अपने लिए कमाल को चूज़ कर सकते हैं, मुंतखब कर सकते हैं। पहला रास्ता ये कि आप लोगों के कहने पे चलें। अच्छा, यानी अब आपने कहा ना कि मौलाना इबादत, आपने कहा इबादत के लिए बने हो, इबादत क्या है? कमाल, कमाल को हासिल करो, तो मकसद खिलकत क्या है? कमाल, यानी एक्सट्रीमिज़म पे जाओ, यानी एक्सट्रीम समझ शिद्दत पसंदी नहीं है यहाँ पे, एक्सट्रीम यानी आला तरीन उहदे पे चले जाओ। अच्छा, तो ये कमाल कहाँ से हासिल करें? 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है लोगों के रास्ते पर चलें, लोगों से कमाल ले लें। लेकिन हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो अपने ही किए पे नादिम और पशिमान हो रहे हैं। कल जिनको वज़ीर आज़म बनाया था और उन्हीं के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं, वो ऐसे वज़ीर आज़म, उनको ये नहीं पता उनको निकाला क्यों गया, बार बार पूछा है मुझे क्यों निकाला गया है। ठीक है, क्या है, लोग पशिमान हो रहे हैं ना। अब आप देखें कि मसलन कोई सोसाइटी एक फैसला कर दी, बाद में उसको चेंज कर देती है, इसका मतलब है लोगों की रास्ता जो है वो सही नहीं है, कामिल नहीं है, पशिमानी है, नदामत है। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या है? आप ख़ुद इंतखाब करें। वही चीज़ जो सोसाइटी में थी वही चीज़ आप में भी मौजूद है, आप भी पशिमान होते हैं, आप भी नादिम होते हैं, फ़लाँ को दोस्त क्यों बनाया था, फ़लाँ घंटा क्यों ज़ाया किया था, फ़लाँ मोबाइल में फ़लाँ क्लिप क्यों देखा था, फ़लाँ गाना क्यों सुना था, फ़लाँ से दोस्ती क्यों की थी। एक नौजवान कहता है कि मैंने एक निगाह हराम डाली थी। बाज़ औक़ात इंसान लम्हों के फ़ैसलों से पूरी ज़िंदगी या ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया तबाह कर देता है। मसलन एक छोटी सी सुई किसी की आँख में खुदा नखास्त दाखिल कर दी जाए, वो कहे आई एम सॉरी। छोटी सी सुई, आपने एक दफ़ा सुई डाली है, सेकेंड्स का काम था, उसकी आँख हमेशा के लिए ज़ाया हो गई। सेकेंड का काम ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। अब एक नौजवान कहता है मैंने एक निगाह हराम डाली थी, एक निगाह हराम। अब उसने किसी को देखा हो या कोई तस्वीर देखी हो या कोई फिल्म देखी हो, एक निगाह हराम। मैं 11 साल उसका खमियाजा भुगतता रहा, 11 साल जवानी के 11 साल, तवज्जो कीजिएगा, एक निगाह हराम। ये इसी दुनिया की बातें। एक नौजवान मेरे पास आया, अच्छा कल मैंने कहा था 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगा मैं, पहले हिस्सा इल्मी होगा, दूसरा हिस्सा मुशाहदाती होगा, तीसरा हिस्सा रोज़मर्रा। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा उसका पाबंद नहीं रहूँगा, और जहाँ जो जो मिसाल आती जा रही है उसको आपकी समाअत की नज़र करना। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा नगरमी तो दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे साथ साथ हैं या नहीं है? क्या कह रहा था मैं? माशाल्लाह, सही, माशाल्लाह। देखिए ऐसे होते हैं जवान, इनकी सेहत और सलामती के लिए दुरूद भेजें। सब हाजिर हैं लेकिन सब इतने मजजूब हो गए गुफ्तगू में कि अब ये मिसाल क्या बयान करने वाले मौलाना, लिहाजा वो बात रह गई लेकिन उस मिसाल के इंतज़ार में, लिहाजा सब हाजिर जवाब। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे मौजूद मौजूद हैं, और जिस्म से भी मौजूद हैं और दिल से भी मौजूद हैं। एक नौजवान मेरे पास है, ये जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं ना कॉलेज स्कूल की, ज़रा गौर से सुने। मौलाना, मैं चूँकि माहिर नफ्सियात हूँ ना, यूथ काउंसलर हूँ, तो बातें आराम से कह देता मेंबर में, मुझे कोई मसला भी नहीं होता। मैं एक लड़की का आशिक हो गया हूँ, मेरी तो आँखें बाहर निकल आई। क्या हुआ मैं, क्या कहा तुमने? मौलाना वो वाला चक्कर हो गया है। मैंने कहा यार इंसान के बच्चे बनो तुम, तुम्हें माँ बाप पढ़ाने भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, तुम इन चक्करों में लग गए हो। अब वो भी आशा था, ऊपर का खाना खा लिया था, बस नसीहत की मैंने समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि आशिक ऊपर का खाना खाली हो जाता है। कुछ दिन बाद आया सर झुका कर, मैंने पूछा बरखुदार क्या हुआ? कह रहे मौलाना आप सही कह रहे थे। मैंने कहा हुआ क्या? अब ये नौजवान बच्चे ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। कहने लगा कि मौलाना जिससे मोहब्बत का इजहार किया था उसने अपने लेंस का कलर चेंज कर लिया है। एक नौजवान एक रंग की वजह से धोखा खा जाता है। लेंस का कलर चेंज हुआ, भूत उतर गया इश्क-आशिकी का। ये मिसाल क्यों दी? ये मिसाल इसलिए दी है कि जब शिनाख्त और मारफत ना हो ना ज़ाहिरी चीज़ों का, इंसान आशिक और दिलदादा हो जाए, क्या होता है फिर? ये सूरत हाल होती है। देखिए शरीक हयात का इंतखाब फितरी हक है एक नौजवान का, फितरी हक है, ये नेचुरल हक है। ये हक अल्लाह ताला भी आपसे नहीं छीन सकता, आपका हक है। एक लड़की और लड़के का हक है बुलूगत के बाद जब सन इज़्ज़वाज शादी को पहुँचे, उनका हक है कि वो खुद चूज़ करें, खुद करें। ये पाकीज़ा एहसास है और ये पाकीज़ा एहसास अल्लाह ताला ने रखा है, किसी और ने नहीं रखा। अल्लाह ने ये पाकीज़ा एहसास रखा है शरीक हयात का इंतखाब। लेकिन अगर ये गलत तरीक़े से इसको दर हकीकत ढूंढने की कोशिश की जाए तो फिर नतीजे यही निकलता है। तो हमें वो शनाख्त वो मारफत हासिल करनी है कि जो दर हकीकत हमें अल्लाह की इबादत तक पहुँचाते। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद। तो ये कमाल जो है हम इसे इस दुनिया में तलाश कर रहे हैं। पहला रास्ता क्या है? लोगों से लें, लोग पशेमान होते हैं, नादिम होते हैं, पलट आते हैं। दूसरा रास्ता मैं खुद हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा पशेमान हुआ, नादिम हुआ, अपने फैसले तब्दील किए। तीसरा रास्ता क्या है? मुतमइन तरीन रास्ता, जिसने मुझे बनाया है उससे पूछूँ। जैसे कल मैंने दी कि अल्लाह ने इंसान के साथ एक किताब उतारी है, थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। थ्योरी कुरान है, प्रैक्टिकल आले मोहम्मद। इनको देखते चले जाओ और अपने अमल की सलाह करते चले जाओ। अब इंसान को कहा लकद करम न बनी आदम, दो तरीके से कुरान में इंसान को बयान किया गया। लेकिन इस आयत से कबल मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, मुख्तलिफ अंदाज से इंसान की खिलकत को बयान किया गया है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंस और जिनों को अपने सिर्फ अपनी इबादत के लिए खल्क किया है। अफहसिबतुम अन्ना खलकनाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क किया है, तुम्हारी ज़िंदगी कोई मकसद नहीं है? व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम्हें हमारी तरफ पलटाया नहीं जाएगा। तुम दुनिया में आए हो बस, इस तरह दुनिया छुट गए, अल्लाह से आज़ाद हो गए। कल तीन सवाल मैंने अर्ज़ किए थे इमाम मूसा कादिम अलैहि सलाम की हदीस के, कहे बहुत आसान थे। मिनैन कहाँ से आयो, इलाइन कहाँ के मुसाफिर हो, फीएन कहाँ खड़े हो। इतने सादे तरीन सवाल और सादे तरीन जवाब, लेकिन इस सादे तरीन सवाल का जवाब देना मैदान अमल में ये सख्त है। अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। शैतान की मुखालिफत करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। आले मोहम्मद का कहना मानना चाहिए, बहुत अच्छा है। आले मोहम्मद को खुश करना चाहिए, बहुत अच्छा है। माँ बाप को खुश रखना चाहिए, बहुत अच्छा है। माँ बाप की बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन मरहले अमल में इंसान को पता चलता है अल्लाह की इबादत करना कितना मुश्किल है, शैतान से लड़ना कितना मुश्किल है। वालदैन बुला रहे हों, सामने क्रिकेट बुला रहा हो, उस वक्त जी अम्मी कहे बेटा बस कर दो मोबाइल, बहुत हो गया। वालदा का कहना माने या मोबाइल का कहना माने, मुश्किल होता है। बाजार में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, ऑफिस में गए, नामहरम से नज़रें बचाना मुश्किल है, कानों में गाने की आवाज़ आना मुश्किल है, एक दूसरे का रिकॉर्ड लगा रहे होते हैं, तमस्खुर कर रहे होते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, ज़बान को रोकना वक्त से अमल कितना मुश्किल है। क्या करें, कैसे एनर्जी और ताकत आए, अब ये सब हमारी गुफ्तगू में शामिल है, लेकिन दर्जा बदल जिसको लेके चलेंगे। क्या तुम्हारा कोई मकसद नहीं है? फिर कहा हो अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही है जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में बेहतर अमल करने वाला कौन है। ये नहीं कहा कि ज़्यादा अमल करने वाला कौन है, कहा बेहतर अमल करने वाला कौन है। तवज्जो रखिएगा ज़िंदगी में, अब ज़िंदगी का मकसद बताया। अब खुदा कह रहा है कि लक़द करम न बनी आदम, हमने इंसान को मुकर्रम बनाया। ये हज़रत आदम के लिए नहीं, सिर्फ बनी आदम, बनी कहते हैं औलाद को, यानी अल्लाह ने हर इंसान को एक दर्जा शराफत और मुकाम और एक पोजीशन अदा की है। लकद करमना बनी आदम, लेकिन जहाँ इंसान की तारीफ की है वह इंसान को सुनाई भी है। खलक़ल इंसान हलवा, खलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान जल्दबाज है, इंसान ज़ईफ़ है, इंसान जो है वो खुदा के सामने फ़ौरन झगड़ा करने वाला बन जाता है। अब उस कमाल को कैसे हासिल करें, दो चीज़ें इंसान के अंदर रखी गई हैं, एक फितरत, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, एक फितरत है, नेचर है, नेचर से मुराद एक नेचर वो है जो फितरत कही जाती है, लेकिन एक नेचर वो है कि जो आप बाहर देख रहे होते दुनिया में, जिसको आप आलम मादा, आलम तबीयत, आलम जिसको इंग्लिश में कहेंगे मैटर कहते हैं, मटेरियल दुनिया, मादी दुनिया, एक नेचर उन माना में, लेकिन एक फितरत नेचर वो है जो आपके अंदर है। इस नेचर की तीन खसूसियत हैं जो अल्लाह ने आपको दी है, ये पैदा नहीं की जा सकती, ये सिखाई नहीं जा सकती, ये ज़माने के साथ चेंज नहीं हो सकती। ये नेचर जो दी है पैदा नहीं हो सकती, आपके अंदर पैदा नहीं की जाएगी, अल्लाह डालेगा आपके अंदर। जुल्म से नफरत और अमन से मोहब्बत बाई नेचर है इंसान में, सच अच्छा है, झूठ बुरा है, गुनाह बुरा है, नेकी अच्छी, ये बाई नेचर है, इसको उर्फ आम में यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है, कायनाती हकायक। ये ना पैदा किया जाएगा, ये नहीं सिखाने से नहीं आएगा कि बच्चों को सिखा रहे हैं आप 1 2 3 4, अब नेचर सिखा, नहीं, बाई नेचर है। रोना बाई नेचर है, बच्चा सीखता नहीं है रोना, तवज्जो रखिएगा, उसको थप्पड़ मार के रुलाया नहीं जाता बेटा रोना सीखो, ऐसे चीखते नहीं, क्या है बाई नेचर, सिखाया नहीं जाता। एक, दो, इसका कोई उस्ताद नहीं होता। तीन, ज़माना गुजरने के साथ चेंज नहीं होता, जो आज से 3000 साल पहले नेचर थी वही आज है, वही नेचर हमारे अंदर वदियत की गई है। एक है गराइज़, एक है हमारी ख्वाहिशात, इन दोनों के साथ इंसान को भेजा गया है। बस इसी पे मेरी गुफ्तगु तमाम हो रही, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। ये नेचर जो है, ये फितरत जो है, इंसान को कमाल की तरफ बुलाती है, ऊंचाई की तरफ ले जाती है, उलू यानी रफत यानी बुलंदी की तरफ ले जाती है। गराइज ख्वाहिशात इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती हैं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं हमारी मादी ख्वाहिशात, अगर वो एक दर्जे तक हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो एक दर्जे से ऊपर हो रही हैं, इसका मतलब है कि वो आपके उस हदफ खिलकत में मदद नहीं कर रही हैं। मसलन सोना एक आपकी नेचुरल नीड है, फितरी ज़रूरत है, आपको मसलन 8 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए, नौजवान को वैसे भी ज़्यादा नींद आती है। ये नींद जो है अगर इससे ज़्यादा हो जाए, हद से ज़्यादा हो जाए, ये नींद जो है मकसद खिलकत में आपकी मददगार नहीं होगी, ये क्या होगी, ये आपके लिए नुकसान का सबब बनेगी। इसकी मिसाल ले लीजिए एक तालिबे इल्म की, एक तालिबे इल्म ایک ہدف مقرر کرتا ہے، اس ہدف کے حصول کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے اس کو ایکسرسائز کی ضرورت بھی ہے، اس کو گیمز کی ضرورت بھی ہے، اس کو سیر و تفریح کی ضرورت بھی ہے، تاکہ وہ جو تھکن پڑھائی لکھائی اسٹڈی کی ہے اس کو دور کر سکے، دوستوں کے ساتھ جائز تفریح کر سکے، سیر سپاٹا کر سکے. لیکن اگر یہ تفریح جو اس اسٹڈی کی تھکن کو، تعلیم کی بوریت کو دور کرنے کے لیے ہے، حد سے زیادہ ہو جائے، مشکل کا سبب بنے گی. پانی آپ کی نیڈ ہے، روٹی آپ کی ضرورت ہے، روٹی کا اپنا مقام ہے پانی کا. اگر پانی روٹی سے زیادہ ہو جائے جسمانی صحت بگڑ جائے گی، اور روٹی زیادہ ہو جائے پانی کم ہو جائے ڈیہائیڈریشن ہو جائے گی، دونوں صورتیں. اسی طریقے سے اگر فطری خواہشات ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور وہ غرائز یا وہ مادی خواہشات اگر اس کے ذریعے سے قابو نہ کی جائیں، اس کے ذریعے سے کنٹرول نہ کی جائیں، تو یہی خواہشات انسان کی نابودی کا سبب بن جائیں گی، اور وہ انسان اپنے کمال نہائی کو، یعنی اللہ کے قرب کو، محمد علیہ محمد کے رضا کو حاصل نہیں کر سکتا. اور آسان ترین جو فارمولہ ہے زندگی کو سمجھنے کا، وہ مولا علی نے دیا ہے. اب دیکھیں مولا علی جو ممبر سلونی کے خطیب ہے، کس طریقے سے پوری زندگی کے فلسفے کو سمجھا رہا ہے. اب سائل نے پوچھا مولا بتائیے، اب پوچھتے تو لوگ، ایک بچہ پیدا ہوا ہے اس کا کیا کریں گے، پرندہ ایسا ہوا اس کا کیا کریں گے، مولا کا انڈے دیتا ہے کہ بچے دیتا ہے، کان اندر ہے کہ باہر ہے. اب لوگ ٹیڑھے ٹیڑھے آ کے سوال کر رہے ہیں. تو ایک نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، کوئی کیلکولیٹ کریں، کوئی کتاب دیکھ رہا ہے اندر سے. مولا نے کہا اچھا بتاوے تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، اس نے کہا پانچ. مولا نے کہا گنی کیوں نہیں، کہا کہ گننے کی ضرورت ہی نہیں، جب سے پیدا ہوا شعور سنبھالا ہے، ایک دو تین چار پانچ. شروع میں مشکل ہوتی تھی 1 2 3 4 5 گننے میں، لیکن اب تو یاد ہو گئی، آنکھ بند کر کے بتا دوں گا پہلی کون سی، دوسری کون سی، تیسری کون سی، چوتھی کون سی، پانچویں کون سی. مولا نے کہا جس طرح تیرے سامنے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں، میرے سامنے زمین و کائنات کے اثرات ہیں، مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب مولا ایسا امام کیا کر رہا ہے، فلسفہ زندگی بتا رہا ہے. امام نے کہا تمہاری زندگی نماز کے دو سجدوں کی مانند ہے. اللہ اکبر، تمہاری زندگی نماز کے دو سجدوں کی مانند ہے. جب پہلے سجدے سے سر اٹھاتے ہو، مٹی سے سر اٹھاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مٹی سے بنائے گئے ہو، مٹی سے تمہیں خلق کیا گیا ہے. دنیا میں آتے ہو، گناہ کرتے ہو، اور پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہو، یہ بیچ میں جو استغفر اللہ پڑھ رہے ہو، یہ کس بات کی علامت ہے؟ اے اللہ شرمندگی ہے تیری بندگی نہ کر سکے. یہ دوسرے سجدے میں جانا علامت ہے دوبارہ اسی مٹی میں چلے جاؤ گے. اور پھر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ روز قیامت میں اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. پورا فلسفہ زندگی مولا کائنات نے دو سجدوں میں بیان کر دیا. درود بھیجے محمد والے محمد. اب یہ خواہشات دی ہیں اور ہمیں عقل دی ہے. حدیث میں ہے کہ جس کی خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں وہ جانور سے زیادہ پست ہے، اور جس کی عقل اس کی خواہشات کو کنٹرول کر لے وہ فرشتوں سے افضل ہے. اگر کوئی نابینا انسان آ کے آپ سے کہے یا مجھ سے کہے مولانا میں نامحرم کو نہیں دیکھتا، اچھا بھائی ماشاءاللہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں. ایک سماج سے محروم انسان کہے مولانا میں گانے اور غیبت اور فوش کلمات نہیں سنتا، جزاک اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، آپ نہیں سنتے. ایک بے زبان آ کے مجھ سے کہے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، ماشاء اللہ. کیا ایسا شخص قابل تعریف ہے آپ کی نگاہ میں جو سماج سے محروم ہو کہ میں سنتا نہیں ہوں گناہ کی باتیں، جو بصارت سے محروم ہو وہ کہے کہ میں گناہ نہیں دیکھتا، جو قوت گویا سے محروم ہو کہ میں کوئی بری بات نہیں کرتا؟ کہیں گے یہ تو کوئی فضیلت کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کا دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہے. फजीलत उसके लिए है, मुकाम उसके लिए, पोजीशन उसके लिए, दर्जा उसके लिए कि जिसमें सलाहियत हो और फिर वो काम ना करे, गुनाह देख सकता हो और गुनाह ना करे। वो एक साहब थे, कह लेंगे फौजी साहब थे, वो बड़े डींगे मारते थे, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं मैदान जंग में गया था तो मैंने जो है उसके हाथ काट दिए, मैंने उसकी टांगें काट दी, मैंने ऐसा कर दिया। उसने कहा भाई सर क्यों नहीं लाए? उसने कहा वो पहले कोई ले गया था। मुर्दा आदमी पर तीर चलाना क्या मसला है? तवज्जो कीजिएगा। तो बाज़ औक़ात हम यही कर रहे होते हैं। फजीलत यह है कि वो देखने की सलाहियत हो। अब एक बच्चा कहे, अब जितना जितना कंपटीशन बढ़ता रहता है क्या होता है, आपका ग्रेड बढ़ता रहता है। आपके सामने अगर एक आदमी, आप कहेंगे मौलाना मैंने एक आदमी को शिकस्त दी, बहुत अच्छा माशाल्लाह बेटा, मैं दो को शिकस्त देखे आया हूँ, दो को शिकस्त दिया। अब क्रिकेट में होता है ना, कभी एक विकेट से शिकस्त देते हैं, कभी दो विकेट से शिकस्त देते हैं, कभी तीन विकेट से शिकस्त देते हैं। बहरहाल जितनी विकेट से शिकस्त देंगे उतना दर्जा बुलंद होगा या नहीं होगा, बहरहाल काउंट तो किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है जब आप एक बॉलर के लिए इसने कम बॉल पर ज़्यादा विकटें ली हैं उसके लिए कमाल का सबब बन सकता है, तो फिर एक आम इंसान के लिए कमाल का सबब क्यों नहीं बन सकता कि इसमें देखने की सलाहियत थी, इसका कान गुनाह सुन सकता था, इसकी ज़बान गुनाह कर सकती थी, इसकी आंखें गुनाह दिख सकती थी, फिर इससे नहीं किया। एक तालिबे इल्म वो कहेगा जनाब मैं 20 अफराद को शिकस्त दे के इम्तहान में कामयाब हुआ हूँ, तो फिर इसका मतलब यह है कि दर्जा बुलंद होता रहेगा। तो जितना इंसान का कंपटीशन बढ़ता रहता है उसका दर्जा बुलंद होता रहता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस नहीं, बस इसलिए मैंने मजलिस तमाम की कि ये गराइज और ये ख्वाहिशात हमारे साथ साथ हैं। अब आ जाइए एक दो मिसालें रोज़मर्रा की दूँ और आपकी ज़हमत तमाम करूँ। इस आज़ादारी का क्या मकसद है? सिर्फ आए मातम करें, इमाम हुसैन पर रोएं चले जाएं? क्या इमाम हुसैन हमारे रोने के मोहताज हैं? क्या इमाम हुसैन हमारे अलम निकालने और ताबूत निकालने के मोहताज हैं? नाऊज़ु बिल्लाह। या अगर हम उन पर दुरूद भेजेंगे या उनके लिए मातम करेंगे तो उनके दर्जात बुलंद होंगे? नहीं, ऐसा कोई भी तसव्वुर हमारे जहन में नहीं है और नहीं होना चाहिए। फिर इस आज़ादारी का मकसद क्या है? इस आज़ादारी का मकसद है कि हम अपनी इस्लाह करें। अच्छा, किससे पूछें कि आज़ादारी का क्या मकसद होना चाहिए? खुद इमाम हुसैन से पूछें। आज़ादारी क्या है? आज़ादारी इमाम के गम को बाकी रखना है। आज़ादार, आज़ादार किसे कहते हैं? आज़ा रखने वाला, मालदार, ठीक है? क्या मालदार यानी माल रखने वाला, आज़ादार यानी आज़ा सोग रखने वाला। आज़ादारी की इब्तिदा कहाँ से हुई है? मैदान करबला से, असर आशूर जब खेमों का आग लगी। किसने इब्तिदा की? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। कैसे इब्तिदा की? पहला जुमला क्या था बीबी की ज़बान पे? मैं बहुत सादी सादी बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत हाई फाई बातें नहीं कर रहा। आज़ादारी क्या है? हाय हुसैन, यही जुमला था ना पहला जुमला जो बीबी की ज़बान पे आया इमाम हुसैन से, मतलब यही था हाय हुसैन, वाह मुसीबत मसर। इस हाय हुसैन में तीन हकीकतें पोशीदा थीं। मज़लूमियत हुसैन को बयान किया एक, ज़ुल्म यज़ीद दो, और अजमत दीन तीन। इस एक हाय हुसैन में इमाम हुसैन पर जुल्म हो रहा है उसे बयान करें आप। आज़ादारी यही है, ज़ुल्म यज़ीद दो इसे बयान करें और अजमत दीन। अच्छा मौलाना, इमाम हुसैन की मज़लूमियत ज़ुल्म यज़ीद समझिए, अजमत दीन कहाँ से समझ में आएगा? ये कहाँ से लेके आ गया? ये मौलवी लोग हमेशा कहीं ना कहीं नमाज, रोज़ा, फिट, तकलीद, मुश्तहिद लेके आ जाते हैं। ये आज़ादारी के क्या मसला है? आज़ादारी अलग है, नमाज अलग है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह के पुश्त पे सवार हो गए। आज लोग एतराज़ करते हैं, अरे भाई नमाज जो हो रही है, जुलूस खड़ा हुआ है, हुसैनियत रुकी हुई है और नमाज हो रही है, क्या दलील देते हैं कि पुश्त रसूल पर इमाम हुसैन आ गए? जो जिक्र सजदा एक मरतबा होता था मसलन, उसको 70 मरतबा तूल दिया। बहुत अच्छा, हुसैन के पुश्त रसूल पर आने से रसूल की नमाज रुक गई। लेकिन क्या नमाज रुक गई? नहीं। क्या हुसैन के पुश्त रसूल पे आने से नमाज का जिक्र कम हो गया या नमाज का जिक्र ज़्यादा हो गया। जो तीन मरतबा जिक्र या एक मरतबा जिक्र होता था वो 70 मरतबा हुआ। हुसैनियत वो है जो इबादत खुदा में चार चांद लगा देती है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इमाम हुसैन के आने से नमाज रुकी नहीं, नमाज का दौरानिया तवील हो गया, जिक्र खुदा ज़्यादा हो गया, रसूल का अपने रब से राबता और रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो गया। हुसैन वो है जो खुदा की इबादत को मुस्तहकम कर देता है, हुसैनियत वो है। और अगर इमाम हुसैन नहीं, आज़ादारी है, आज़ादारी भी यही चीज़ है। आज़ादारी और नमाज का टकराव असर ऐसा मुमकिन नहीं है। अबस और फजूल है जो लोग ये काम करते हैं, वो अबस और बेकार कोशिशें कर रहे हैं। चुनाचा ये आज़ादारी जो है ये हमसे अजमत दीन कहाँ से आएगी? इमाम हुसैन से पूछे मौला आप क्यों जा रहे हैं? अब थोड़ा सा इसको करबला की कहानी को रिवर्स में देखें, उल्टा करके देखें। इमाम हुसैन मदीने से निकलें, करबला पहुँचे, अब इसको रिवर्स में देखें क्या हो रहा है। इमाम हुसैन मक्के आए, मक्के से फिर मदीने आए, मदीने से इमाम हुसैन, अब आपने वहाँ से इसको दोबारा से प्ले किया पूरी कहानी को। इमाम हुसैन मदीने से निकल रहे हैं, मोहम्मद बिन हनफी इमाम के भाई आए, कहा कि कहाँ का इरादा है? इमाम ने कहा फला जगह का इरादा है, हम जा रहे हैं। इमाम ने एक वसीयत लिखी है, हाज़ा मा औसा बिही अली इब्न हुसैन इला अखी मोहम्मद बिन हनफिया। ये वसीयत है हुसैन इब्न अली की अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया के नाम। वसीयत है, तहरीर की है, तहरीफ नहीं हो, मिटाना नहीं, तहरीफ का शिकार मत हो जाना, वरगलाने में मत आना। ये हुसैन की वसीयत है, तब जो रखिएगा। अब आपने देखा करबला से आपने कहानी को पीछे किया, मक्के, मक्के से पीछा है मदीने, अब मदीने से स्टार्ट कीजिए दोबारा। क्या है अब आपको पता चला कि इमाम हुसैन निकल रहे हैं, एक लिख रहे हैं उसमें इमाम हुसैन जुमले में, और ये वसीयत कहाँ है? मकतूबात खुतबात इमाम हुसैन मदीनत करबला नामी एक किताब जो उर्दू ज़बान में मौजूद है, उसमें आपको ये वसीयत मिल जाएगी और तारीख़ी असल कुतुब का हवाला भी मिल जाएगा। वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इन्नमा खरजतु लितलब अलइस्लाह फी उम्मत जद्दी। मेरे नौजवान दोस्त मेरी बात सुने, और मेरी आदत है कि कहीं अशरा होता है, कहीं खमसा होता है, कहीं चार, कहीं तीन, कहीं एक मजलिस होती है, तो मैं आखिर में ये कहता हूँ, देखिए अगर मेरी कोई बात आपको ना समझ में आई हो, आपका कोई सवाल हो, तो मिंबर पर तो मामूलन मजलिस में सवाल जवाब नहीं होते हैं, तो आप नौजवानों से कह रहा हूँ खुसूसन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई उलझन है, कोई परेशानी है, या क्लेरिफिकेशन चाह रहे हैं, आप मुझे मजलिस अदा के बाद किसी दिन एक दिन बुला लें, इसी अदा खाने में कहीं पर भी किसी भी घर में बुला लें, कोई मसला नहीं है, और मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ अगर कोई जहन में सवाल है। ये अजमत दीन कहाँ से पता चली? ये अजमत दीन इमाम हुसैन के जुमले से, इन्नमा मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है कि मेरी मजलिस खुश्क है, मुझे पता है वो चटखारे नहीं हैं, वो नारे नहीं हैं, वो माजरत के साथ जो आमियाना तौर से मजलिस से पढ़ी जाती है वो नहीं है, लेकिन जो मैं अपना वजीफ़ा समझता हूँ, मैं नारे वाली मजलिस से पढ़ता हूँ और यहाँ भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ हासिल होना चाहिए। फ़ज़ाइल मौला बराए फ़ज़ाइल मौला हमें सुनने सुनाने का हुक्म नहीं है, फ़ज़ाइल मौला इसलिए सुने कि हमारी बंदगी में इजाफ़ा हो सके, क्योंकि इनके फ़ज़ाइल में भी तरबियत है, इनके मसाइल में भी तरबियत है, इनके फ़ज़ाइल भी हमारी तरबियत करने वाले और हमें नूरानी बनाने वाले हैं, इनके मसाइल भी हमारी तरबियत करने वाले हमें नूरानी बनाने वाले हैं। इमाम हुसैन कह रहे हैं कि मेरे निकलने का मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक, इन्नमा, इन्नमा किसे कहते हैं? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का इरादा यह है कि आपको पकड़े। इन्नमा वलीयुकुम अल्लाहु व रसूलुहु, तुम्हारा वली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है और सिर्फ उसका रसूल है और सिर्फ वो साहिबान ईमान जो हालत में सका। इन्नमा से बेहतर, इन्नमा को शियों से बेहतर कोई और नहीं जानता। इन्नमा खरज, तो मैं सिर्फ इसलिए निकल रहा हूँ एक चीज़ के लिए, ले तलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर। इमाम हुसैन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों अली अकबर का सीना दे रहे हैं, क्यों ज़ैनब की चादर दे रहे हैं, क्यों कासिम का लाशा दे रहे हैं, क्यों अहमद और तैयार हैं हुसैन? दीन वजह। अभी ये बच्चा जो पढ़ रहा था सलाम, हुसैन ने तहतीक सजदा किया ताकि दीन खुदा बच जाए। हुसैन कितना अजीम है, और हुसैन से ज़्यादा खूबसूरत वो दीन है कि जिसके लिए हुसैन अपनी जान सार कर रहा है। हुसैन कितना खूबसूरत है, तो फिर हुसैन का खुदा कितना खूबसूरत होगा कि जिसके लिए सजदे आखिर में अपनी गर्दन कटा रहे हैं हुसैन। उस हुस्न को देखें, सिर्फ हुस्न को इमाम तक महदूद न करें, दीन के हुस्न को देखें। हुसैन तैयार, मेरा शबी है, अली अकबर चला जाए। क्यों? ताकि उम्मत की इस्लाह हो सके। ये उम्मत की इस्लाह क्या हो, यानी अगर आज इमाम हुसैन आ जाएं, दो जुमले और, माजरत के साथ मसाइब की तरफ आ रहा था लेकिन दो जुमले और, अगर इमाम हुसैन आ जाएं तो आज वो क्या कहेंगे? निज़ाम इमामत कायम करेंगे ना। निज़ाम इमामत क्या है, विलायत क्या है? विलायत का मतलब नारे विलायत अली ने वलीअल्लाह, आखिर की अंगूठी पहन लो जी, बलंगू की तरह बाजा लगा के अली अली करते, अली की बूटी, ये है विलायत का माना। क्या है विलायत का माना? यह है कि विलायत के ताबे हो जाओ, विलायत के साथ हो जाओ, विलायत के मुती हो जाओ, विलायत को फॉलो करने वाले बनो, विलायत के साथ साथ चलने वाले बनो। अगर इमाम आ जाएं तो वो यही कहेंगे ना कि अपने अमाल की सलाह करो, किरदार की सलाह करो, अपना सोशल बिहेवियर अच्छा करो। और साजी से मिसाल मैं दूँ, अगर आज पता नहीं मैंने कल दी थी या नहीं दी थी, लेकिन दोबारा मैं अगर तकरार हो रही तो मदरा चाहता हूँ, क्योंकि जब मजालिस की कसरत होती है तो अंदाज़ा नहीं रहता कि कौन सी मिसाल कहाँ दी है। अगर तकरार हो रही तो माजरत चाहता हूँ। अगर इमाम ज़माना आ जाए और किसी नौजवान से कह बेटा लाओ मोबाइल दे दो अपना, क्या कोई नौजवान इस बात के लिए तैयार है कि वो अपने मोबाइल से कुछ भी डिलीट किए बगैर अपना मोबाइल इमाम को दे दे? मोबाइल तो बहुत छोटी चीज़ है ना, कि ये नहीं मालूम मेरा मोबाइल कुछ डिलीट ना करे, ऐसे नौजवान मिल जाएंगे हमें? इमाम ज़माना अगर आ जाए हमारे घर में और कहें ज़रा चैनल दिखाओ, डिश जो तुमने लगाई है घर पे चैनल दिखा दो, मतलब थोड़ा सा रुक जाइए। एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा इमाम ज़माना गिरिया करते हुए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा मौला आप गिरिया करते हुए क्यों जा रहे हैं, आपको तो बुलाया था आपके चाहने वालों ने, आज़ादारों ने। इमाम ने कहा बुलाए थे, मैंने पहला दरवाज़ा खटखटाया, उसके मौला थोड़ी देर रुकी मैं भी आता हूँ, वो भी मोबाइल से कुछ डिलीट कर रहा होगा या गाने की कैसेटें उसे सीडियाँ हटा रहा होगा। दूसरे दरवाजे भी कसम वाला, दो मिनट रुके मैं भी आ रहा हूँ। हमारे घर आमादा नहीं है इमाम ज़माना को वेलकम करने के लिए, हमारे मोबाइल इस काबिल नहीं है कि हम इमाम को बगैर कुछ डिलीट किए हुए दे दें। अगर मैं किसी नौजवान से कहूँ बेटा आप अपना मोबाइल मुझे दे दें, अचानक फोड़ भी ले लूँ उसका, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी तो कहेंगे माना ना थोड़ी देर रुक जाइए। नौजवान जो अपना मोबाइल मुझे दे दे, जब आप मुझे नहीं दे सकते तो इमाम ज़माना को कैसे देंगे? ये सदाकत और सच्चाई कहाँ से आएगी? आज़ादारी से आएगी। आपने डिश जो लगाई उसके चैनल इमाम को दिखाओ, पहले नंबर पे कौन सा है? मौला थोड़ा सा आगे पीछे कर लूँ। मुश्किल है, मुश्किल है सीधा निकला। इमाम को वेलकम कहना बहुत मुश्किल है, दबान से कहना आसान है, आला जल मौला जल्दी 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 अभी आ जाइए, मौला जल्दी आ जाइए, वाकई ना मुश्किल है। और मौला आगे कहा बेटा मोबाइल दे दो। एक बाप था, उसने अपने बेटे से कहा बेटा जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ये आखिरी वाक्य सुना रहा हूँ कि ज़हमत को तमाम, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। अच्छा बाबा जो चाहे, हाँ एक शर्त है। क्या बाबा? जो सुबह से शाम तक करो ना काम वो मुझे आकर रिपोर्ट दे देना। बाबा ये तो कोई मसला ही नहीं है, चलो जी। शाम में बाप घर पहुँचा, हाँ भाई बेटा, पापा मैं सुबह सो रहा था नमाज के लिए, बड़ी मुश्किल से आँख खोली। अच्छा, वजू की नमाज़ पढ़ी, जल्दी से जाके सो गया। फिर मैं कॉलेज के लिए गया, रास्ते में जा रहा था, बस में गाना चल रहा था, मैंने चाहा थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा रुक गया, फिर कोई ना महरम जा रही थी उसमें नज़र पड़ी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था ना उसका, यानी किससे अब इसके गुनाह ज़्यादा हो रहे थे, थोड़ी देर में इसकी ज़बान में लुकनत पैदा हुई और रुक गया, कहा कि अब मैं नहीं बता सकता आपको। बाप ने कहा कि बेटा, जब एक दिन के गुनाह अपने बाप को नहीं बता सकते, तो जिंदगी भर के गुनाह बीबी जहरा के सामने कैसे बयान करोगे? एक दिन के गुनाह अपने बाप को नहीं बता सकते तो अपने इमाम जमाना का सामना कैसे करोगे? यह है वो असलाह जो आज़ादारी हमसे चाह रही है, बस इसलिए ये वो मकसद तख्लीक कि जिसको निखारना संवारने के लिए हुसैन इब्ने अली कुर्बानी दे रहे हैं। मेरे नौजवानों से दरख्वास्त, खुदा ना अपनी कदर कीमत जाने जो गौहर, जो दौलत अल्लाह ने जवानी के नाम पे आपको दी है, जवानी के नाम पे आपको दी, इसकी हिफाजत करें। अगर आपने हिफाजत ना की ना, ये दौलत ज़ाया हो जाएगी। इंसानियत की निजात के लिए, हिदायत के लिए इमाम हुसैन कह रहे, मेरा अली अकबर हाजिर है, मेरा औन मोहम्मद हाजिर है, मेरा कासिम हाजिर है। कितने अजीम तरीन हस्तियों को हुसैन कर्बला लेके आ गए। काफिला अहल बैत का रवाना हो रहा है। आज चाहता हूँ कि बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ो। अजीब मसाइब हैं बीबी के, अजीब मसाइब हैं। ये वो बीवी है कि जिसने पंजतन का गम बर्दाश्त किया है। रसूल इस दुनिया से गए, अली और फातिमा, हाना हसन और हुसैन का गम नहीं देखा। अली फातिमा गई, अली हसन हुसैन का गम नहीं देखा। अली गए, हसन हुसैन का गम नहीं देखा। इमाम हसन गए, इमाम हुसैन का गम नहीं देखा। लेकिन ज़ैनब वो हस्ती है जिसने पंजतन का गम बर्दाश्त किया है। अमान अज़ दिल ज़ैनब मियाँ ने हमें दिला। ज़ैनब का दिल बहुत दुखी है, बहुत बड़ा है अज़ीज़ अलीगढ़। ज़ैनब को खुदा ने तैयार किया है कर्बला के लिए। जब माँ पे जलता वो दरवाज़ा गिर रहा था ना, ज़ैनब छोटी थी, देख रही थी। मैं हाथ जोड़ के कहूँ, बीबी ये माँ पे जलता हुआ दरवाज़ा नहीं गिर रहा, ये कर्बला की तैयारी है। आज माँ पे जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा है, कल आपके ख़याम को आपके सामने आग लगाई जाए। जनाब जहरा का मोहसिन शिकम में शहीद हो गया। मैं कहूँ बीबी ये मोहसिन की शहादत नहीं है, अरे कर्बला में अली असगर की शहादत को देखना होगा। अल्लाह अकबर। जब मौला अली का जख्मी सर देखा था ना, जब बाबा को लेके आए थे, जनाब ज़ैनब ने गिरिया करना शुरू किया। ज़ैनब का गिरिया ऐसा था कि मौला अली ने गिरिया करना शुरू किया। मैं कहूँ ए बीबी, आज मौला अली का जख्मी सर देखा है, ये कर्बला की तैयारी है, कल नो के नेजा पर हुसैन के सर अकदस को देखना होगा। और जब मदीने में भाई हसन के कलेजे के टुकड़े तश में देखे, बहन ने सरोसीना पीठा है, हसन मुश्तबा उम्मत जफाकार ने आपके साथ क्या किया? मैं हाथ जोड़ के कहूँ बीबी, ये मदीने में हसन के कलेजे के टुकड़े नहीं हैं, ये कर्बला की तैयारी है। आज हसन के कलेजे के टुकड़े, कल इब्ने हसन की लाश के टुकड़े देखने होंगे। आज रुको मल्ला, ये बीबी गिरिया करने वाली नहीं थी। एक दफ़ा कैद खाने में सर आ रहे थे, बीबियाँ एक एक सर को लेती अपने वारिस के और एक दफ़ा गिरिया करना शुरू करती। किसी ने देखा कैद खाने के कोने में दो सर रखे हुए हैं, उन पर रोने वाला कोई नहीं है। कहा कि क्या इन बच्चों की माँ मर गई है कि
گیند پہ رونے والا کوئی نہیں ہے جناب زینب، خبردار ایسا نہ کہو، میں ان بچوں کی ماں ہوں لیکن میں نے حسین پر نثار کر دیے، لیکن ماں تھی نا زینب، سینے میں ممتا کا دل تھا، جب مدینہ پہنچی، گھر پہنچی، اس حجرے میں گئیں جہاں اور محمد تھے، وہاں دو چھوٹے چھوٹے مسلے بچھے تھے، ایک اون کا ایک محمد کا، یہ بھی تربیت کا انداز ہے زہرا کی بیٹی کا کہ بچوں کو بچپنے سے نماز کی تربیت دے رہی ہے، ایک دفعہ مسلوں کو اٹھایا، کبھی چومتی ہے، کبھی سونگتی ہے، کبھی آنکھوں سے لگاتی ہے، اے اون محمد یہ تیرے مسلے ہیں، ارے ماں کو معاف کر دینا، ارے میں کربلا میں نہ روئی، ارے میں بیاباں اور صحرا میں تمہیں یاد نہ کیا، اے بچوں تمہاری ماں نے زندہ میں گریہ نہ کیا کہ کہیں بھابھی ام رباب کا دل نہ دکھے، لیکن بچوں ارے یہاں کوئی نہیں ہے، آؤ میں تم پر رو کر اپنے